स्थित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से हागै नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मंदिर का पुनर्निर्माण। श्रोताओं, हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जो प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के महान और जीवित वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से पुराने नियम की पुस्तकों में से हगै नामक भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने इस पुस्तक के परिचय को देखा और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और इस अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। आज हम जब हगै की पुस्तक से अध्ययन को करते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि जब वे आपके वचन को इस अध्ययन के माध्यम से सुनते हैं तो आपका वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन को स्पर्श करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आप हम सब के साथ हो, हमारे सहायक हो ताकि आपका वचन पवित्र आत्मा की अधीनता में होकर हर एक के जीवन में अधिकाई से कार्य करने पाए। आज के वचन पर, अध्ययन पर अपनी आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम हगै नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हमने देखा कि इसराइली स्वदेश लौट गए हैं, अर्थात स्वदेश लौटे यहूदी बड़े ही जोश से भरे हुए हैं। वे यरूशलेम मंदिर के पुनः निर्माण का कार्य आरंभ तो कर देते हैं, परंतु सामरियों के विरोध के कारण वे हिम्मत हार जाते हैं और शांत बैठ जाते हैं। अपने मन को समझाने के लिए उनका कहना था कि मंदिर के पुनः निर्माण का समय अभी नहीं आया था। यह परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वे मंदिर का पुनः निर्माण करें। परमेश्वर ने उनकी बातें सुनी तो उसने हगै से कहा, जो चुभने वाली बात है परंतु ध्यान देने योग्य अति महत्वपूर्ण है। आइए हम पढ़ेंगे हगै नबी की पुस्तक एक अध्याय उसके दो पद में। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। मेरे प्रियो, नहमिया की पुस्तक पढ़कर आप जानेंगे कि यरूशलेम के शहरपनाह के पुनरुद्वार के समय उनका विरोध अत्यधिक विकराल और विशाल था। मंदिर के पुनर्निर्माण में भी ऐसा ही विरोध किया जा रहा था, जिसके कारण उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए परमेश्वर का समय नहीं आया है। तब परमेश्वर का वचन कहता है, ये लोग कहते हैं। परमेश्वर उन्हें सदैव मेरी प्रजा कहता था, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया था। वह उनसे रुष्ट है, वे उसकी इच्छा के विरुद्ध अपनी अवज्ञा को पावनता का आवरण पहना रहे थे। यह परमेश्वर के भवन के पुनः निर्माण का उचित समय नहीं है, यही उनका कहना था। यहां हगै की बात कठोर तो है, परंतु अनेक मसीही जनों को चुप्पी भी है। आपने सुना होगा कि विश्वासी किसी काम को नहीं करते या कहीं जाने से इनकार करते हैं कि वह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। वे यहां तक कहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें कुछ और करने की प्रेरणा दी है। मेरे प्रियो, यह एक धार्मिक युक्ति है जो उनके असंख्य पाप को ढांकती है। परमेश्वर की इच्छा को दोष देकर किसी काम को नहीं करना बड़ा आसान होता है। पास्टर या पादरी जब कलीसिया में कठिनाइयों का सामना करने लगते हैं तो कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा इसमें यह है कि वे किसी और कलीसिया में जाएं। इसी प्रकार इस्राएल भी कठिनाइयों को परमेश्वर की इच्छा में काम न करने का संकेत समझ रहा था। मेरे मित्रों, हम अपने आराधनालय का पुनरुद्धार कर रहे हैं, या यूं कहें कि कलीसिया के सदस्य चाहते थे कि कुर्सियों पर गद्दियां लगवाई जाएं, जिसमें 1,500 रुपए प्रति सदस्य खर्चा आना था और कलीसिया योगदान के लिए तैयार थी, परंतु कुछ पाखंडियों का कहना था कि यह पैसा किसी और सेवा कार्य में दिया जाना चाहिए। अतः मैंने उनसे कहा कि जो अपने रुपए 1,500 सेवा कार्य के लिए देना चाहते हैं या चाहें, वे वहां दान दे सकते हैं और दूसरे सेवा कार्य के लिए निमंत्रण खुला दे दिया गया। दान पत्र में बहुत ही कम दान आया। क्यों? सेवा केवल एक बहाना था। वे योगदान देना ही नहीं चाहते थे। उनका कहना था कुर्सियों में गद्दियां लगाना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। कलीसिया के सुंदरीकरण का समय अभी नहीं आया है। मेरे मित्रों, मेरा अनुभव है कि मैं जहां जहां परमेश्वर की सेवकाई के लिए गया, वहां वहां मैंने कलीसिया का पुनरुद्धार ही किया और हर एक स्थान पर एक आलोचकों का एक छोटा सा समूह पाया जो करते तो कुछ नहीं थे, परंतु कहते थे हमें यह पैसा किसी अलग सेवा में देना चाहिए। परंतु सच तो यह है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन की सेवा में कभी भी पैसा नहीं दिया। हगै के श्रोता भी यही मानसिकता रखते थे। हगै उनका दोष प्रकट कर रहा है जो पीड़ादायक था। अब उसका पहला संदेश है सितंबर 1520 ईस्वी पूर्व का, जो परमेश्वर का वचन है। उनका कहना था कि परमेश्वर के भवन के पुनः निर्माण का समय नहीं आया है, परंतु उन्होंने अपने घर तो बना लिए थे। उनके घर बनाने का समय आ गया था। हम सदैव अपने लाभ की बात को परमेश्वर की इच्छा कहते हैं, परंतु जब परमेश्वर का काम करने की बात आती है तब वे कहते हैं कि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। कठिनाइयों और बाधाओं का अर्थ यह नहीं है कि वह परमेश्वर की नकारात्मक इच्छा का प्रतीक है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा कभी कभी बहुत ही कठिन होती है, जैसा कि हम आगे उदाहरण के साथ देखेंगे। आइए हम पढ़ें हगै नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 3 और 4 पद को। हगै 1:3-4 पद में लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन हगै भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। मेरे प्रियो, अब ये लोग परमेश्वर के भवन के लिए तो कहते थे कि उसके पुनः निर्माण का समय नहीं आया है, नहीं हुआ है, परंतु उन्होंने अपने घर बना लिए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके घर बनाने का समय आ गया था। परमेश्वर कहता है कि उनके घर छत वाले थे, अर्थात पक्के और अच्छे घर थे। उन्हें स्वदेश लौटे 15 वर्ष हो गए थे। उन्होंने अपने अपने घर तो अच्छे रीति से बना लिए थे, परंतु परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा था। मेरे मित्रों, आपको आश्चर्य तो होगा, परंतु मैंने अपने सेवाकाल में इन बातों को देखा है कि ऐसा ही होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा है कि मैं आपकी सेवा में योगदान दूं, परंतु जब कठिनाइयां उत्पन्न होने लगती हैं, तब वे कहते हैं, मेरे विचार में इस समय आपकी सहायता करना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। कठिनाई आते ही उनका संकल्प परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो जाता है, परंतु उनके लाभ की सब बातें परमेश्वर की इच्छा में ही होती हैं। हगै के समय क्या उन्हें अपने घर बनाने में कठिनाई नहीं हो रही थी? सब कठिनाइयों का सामना करते हुए करके उन्होंने अपने घर बना लिए, परंतु परमेश्वर का भवन बनाने के लिए उन्हें परमेश्वर की इच्छा कठिनाइयों के कारण काम न करने का संकेत प्रतीत हो रही थी। वे झूठा बहाना बना रहे थे। आज भी बहुत से लोग परमेश्वर के कार्यों के लिए हाथ बटाने से अपने हाथों को पीछे खींचते हैं और कहते हैं कि यह सही नहीं है, यह परमेश्वर की इच्छा या कार्य नहीं है। वे झूठे हैं। परमेश्वर का काम न करने के लिए ऐसा बहाना सुनते सुनते मैं भी उब गया हूं। अब कोई कठिनाई सामने आ जाए तो वह परमेश्वर की इच्छा है ही नहीं कि वे काम करें। वे परमेश्वर की इच्छा के बारे में क्या जानते हैं? अब कोई काम कठिन हो और आपसे कीमत मांगता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। परमेश्वर की इच्छा निर्धारित करने की यह विधि नहीं है। जी हाँ, परमेश्वर की इच्छा प्रायः कठिन होती है। यदि हम परमेश्वर के पूर्वकालीन भक्तों को देखें तो समझ पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा सदैव ही आसान मार्ग नहीं थी। मैं सोचता हूं कि अब्राहम इन लोगों से क्या कहेगा जो कहते हैं यह परमेश्वर की इच्छा नहीं कि यह भवन बनाया जाए या यह काम किया जाए। अब्राहम कसदियों के ऊर नगर में रहता था। वह एक सफल व्यापारी था। उस युग में ऊर नगर एक सभ्य और समृद्ध नगर था। वह एक सुख सुविधा संपन्न नगर था। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं चाहता हूं कि तू ऊर को छोड़ दे, अर्थात त्याग करे। अब्राहम यदि तर्क करके कहता कि उसने परमेश्वर को समझने में चूक की तो वह सही माना जाता, क्योंकि सुख सुविधा के उस नगर को छोड़ना परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल कैसे हो सकता था। मेरे मित्रों, आज सेवा क्षेत्र में हजारों सेवकों की कहानियां हैं। आत्मत्याग का जीवन वे जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे इसे परमेश्वर की इच्छा कहते हैं। मैं सोचता हूं कि हम में से कितनों को परमेश्वर की सेवकाई के लिए उन स्थानों में होना चाहिए जहां बहुत कठिनाइयां हैं, जहां पर लोग परमेश्वर के वचन के बिना मर रहे हैं। आज कितने कलीसियाई सदस्य सामाजिक कार्यक्रमों में अत्यधिक व्यस्त हैं, जिनमें न तो आत्मत्याग की आवश्यकता है और न ही कष्ट उठाने की। इसकी अपेक्षा कि हम विरोध का सामना करके परमेश्वर के वचन का प्रसारण करें, सत्यता को लोगों तक पहुंचाएं। यहां हगै फिर कहता है कि ये उसके अपने शब्द नहीं है, यह परमेश्वर का वचन है। जब मैं बड़े बड़े आराधनालय देखता हूं और उनके परिवेश में गरीबों को देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है, और उन आराधनालयों पर उंगली उठाकर यह कहना बहुत आसान है, यह उचित नहीं है। मैं मानता हूं कि इमारतों में पैसा लगाना उचित नहीं, परंतु आराधनालयों का टूटा फूटा होना भी तो उचित नहीं। पापी को आकर्षित करने के लिए आराधनालय को भी आकर्षक होना है। मैंने एक आराधनालय के बारे में सुना कि वह बहुत बुरी स्थिति में था। इसका कारण था कि वह कलीसिया सब पैसा परमेश्वर के वचन की सेवा में लगा देती थी। वहां का पास्टर मुझे अपने घर में ले गया और मेरी राजसी सेवा की। उसका अतिथि कक्ष ऐसा था जैसा मैंने कभी नहीं देखा। उस युग में मुझे उसके घर की कीमत 50 लाख से अधिक बताई गई थी। मैंने बड़ी कठिनाई से मुंह में आए शब्द रोके। आप प्रचार सेवा में पैसा देते हैं और अपने आराधनालय को एक दरी भी नहीं देते, परंतु आप अपना घर को देखें। यदि आप विलासिता में कटौती कर लें तो आप परमेश्वर के वचन की सेवा में भी पैसा देकर आराधनालय की सुधि ले सकते हैं। मेरे मित्रों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप अपने ऊपर कितना पैसा खर्च करते हैं और परमेश्वर के लिए कितना देते हैं? यह प्रश्न हमारे लिए है। मैं इस संदर्भ में एक और उदाहरण आपको देता हूं। मैं अपने एक मित्र के साथ भोजन करने के लिए गया। वह अच्छा विश्वासी है, भोजन महंगा था और उसने परिचारिका के लिए टिप भी उदारता से दिया। उस दिन रात को हम प्रचार सभा में गए। भेंट के समय अर्थात दान लेने के समय मेरे एक मित्र ने जो दान डाला वह होटल की परिचारिका की टिप से भी बहुत कम था। मैंने सोचा, यह तो परमेश्वर को एक परिचारिका से भी छोटा समझ रहा है। इसराइली कह रहे थे कि परमेश्वर के भवन को बनाने का समय अभी नहीं आया था। परमेश्वर कहता है, तुम्हारे घर बनाने का समय कैसे आ गया? आज कलीसिया में बहुत आडंबर है। मनुष्य अपने लिए जो कर रहा है उसकी तुलना में वह परमेश्वर के लिए तो बहुत ही कम कर रहा है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि हगई की बात हमें चुभेगी। वह प्रशंसा का पात्र नहीं होगा, वह चेतावनी की घंटी है। हम किसी आवाज के कारण नींद से जागना नहीं चाहते हैं। हमें नींद से जगाने वाले को हम दंड के योग्य समझते हैं, पुरस्कार के नहीं। आज हम अपनी समृद्धि सुख सुविधा में ऐसे निश्चिंत हैं कि विघ्न डालने वाले पर हम हाय कहते हैं। एक कलीसिया को अपने आराधनालय में घंटा लगाने से रोका गया था क्योंकि वहां के लोगों की नींद सुबह घंटे की आवाज से टूट जाती थी। आज यहुना बपतिस्मा देने वाला होता तो उसे भीड़ को भड़काने और आपदा की पुकार करने के अपराध में फांसी का दंड दिया जाता। इसी कारण परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता जनमान्य नहीं थे, उन्हें पत्थरवाह किया गया था। हगै भी एक अलार्म घड़ी है, वह हमें नींद से जगाता है, वह हमारी दिनचर्या में विघ्न डालता है। न तो उसके युग में लोगों ने उसे चाहा था, न ही आज हम उसे चाहेंगे। वे अभी अभी बंधुआई से लौटकर आए थे, परंतु उन्हें उसका संदेश अच्छा नहीं लगा। वह बड़ी ही कठिन परिस्थिति में था, परंतु उसने अपने लोगों को जगाना चाहा कि वे परमेश्वर के लिए कुछ करें। उसकी विधि असामान्य थी, यद्यपि उसकी विधि आज काम में नहीं ली जाती है, मेरे विचार में वह परमेश्वर के काम में बहुत उपयोगी है। मेरे मित्रों, आज आपका जीवन किस प्रकार का जीवन है? क्या आपके लिए भी कोई जगाने वाला चाहिए, या आप परमेश्वर के लिए अपने कार्यों को कर रहे हैं जिसे आपको दिया गया है? मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको भी निर्णय लेना है कि क्या आज हम अपने कार्यों में, अपने घरों में, अपने सुख सुविधाओं में उलझे हुए हैं, अपने लिए कर रहे हैं और परमेश्वर के लिए, उसकी कलीसिया के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आज आपको निर्णय लेना है ताकि आप एक सही पहचान के साथ आगे बढ़ सकें। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़ कर देखेंगे, पीछे न मुड़ कर देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम किसी से न डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। कांटों भरे पथ से हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको। कांटों भरे पथ से हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको। लेके सहारा यीशु का, मंजिल को पहुंचेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। चाहे हो अंधेरा या हो तूफान, हिम्मत से आगे करेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे।